तो हम लोग ग्रुप 16 शुरू करते हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को चाइल्ड कोचेंस भी बोला जाता है, जिसमें कि मतलब है कि ब्रास और उसके एसोसिएटेड, ब्रास का सल्फर और उसके एसोसिएटेड कंजनर्स विद कॉपर, मतलब चालकोजन ग्रे फॉर ब्रास एंड एसोसिएटेड विद सल्फर एंड कंजनर्स विद कॉपर। मोस्ट कॉपर मिनरल्स आर आइदर एज ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स और फ्रीक्वेंटली अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 16। तो मतलब चालकोजन से इसलिए बोला जाता है कि कॉपर के जो ज़्यादातर मिनरल्स हैं वो या तो ऑक्साइड या तो सल्फाइड या फिर ग्रुप 16 के ही बाकी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर मिलते हैं नेचुरल फॉर्म में, इसीलिए चालकोजन बोला जाता है। अकरेंस ऑक्सीजन लाइफ गिविंग गैस है, 46.6% बाई मास ऑन अर्थ है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ ऑक्सीजन, 21% बाई वॉल्यूम इन एयर। सल्फर एस सल्फेट्स, इट इज़ फाउंड इन बराइटे, BSO4, जिप्सम CSO4.2H2O एंड एप्सम MgSO4.7H2O। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं ग्रुप में, मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घट जाता है, ये बात याद रखने का, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड एज सल्फाइड्स, PbS, ZnS, CuFeS2, कॉपर पाइराइट्स, वो है ये। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, जो कि वोल्केनिक गैसेस में मिलता है। एग्स, प्रोटीन्स, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर, वुल, ये सब में सल्फर होता है। काफ़ी मतलब एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं याद करने का। सेलेनियम एंड टेलुरियम आर फाउंड एज सेलेनाइड्स एंड टेलेनाइड्स इन सल्फाइड ओर्स। तो ये बात ध्यान देने का है कि सेलेनियम और टेलुरियम ये दोनों सल्फर के साथ मिलते हैं, सल्फाइड ओर्स के अंदर ही मिलते हैं, सल्फर के साथ मिलते हैं। पोलोनियम डीके प्रोडक्ट है थोरियम और यूरेनियम का, डीके प्रोडक्ट है थोरियम और यूरेनियम का, ठीक है। और लिवरमोरियम एक सिंथेटिक एलिमेंट है, उसके बारे में डिटेल ज़्यादा नहीं है। साइज इंक्रीजेस ऑन द ग्रुप, ऑब्वियसली शेल्स बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ेगा। द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज एक्सेप्शनली स्मॉल। अब ये हम लोग को एनोमली हर जगह मिलेगा कि जो 2p और जो सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है हर ग्रुप में, उसमें कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन में था, अभी ऑक्सीजन में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है ग्रुप 15 सेकेंड पीरियड में होने के कारण, उसका स्मॉल साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी। अब आते हैं अगले पेज पे। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस अराउंड द ग्रुप, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी होगा। लेकिन ग्रुप 16 का जो आई है वो ग्रुप 15 से कम होता है, क्यों होता है ऐसा, जबकि नहीं होना चाहिए था, अक्रॉस द पीरियड तो बढ़ता है नहीं। ग्रुप 15 में हमने पढ़ा था, उसमें हाफ फिल कन्फिग्रेशन होता है, पी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड होता है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 का 15 से कम होता है, क्यों, क्योंकि ग्रुप 15 में हाफ फिल होता है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑक्सीजन का लोएस्ट होता है, उसका स्मॉल साइज के कारण बोल रहे ना, एक्सेप्शनल बिहेवियर अभी शो करेगा बहुत जगह, तो ऑक्सीजन का लोएस्ट होता है और बाकी डाउन द ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी घट जाता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्यों, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, मतलब नेगेटिव लेस नेगेटिव से बन जाता है। अगर आप साइन चेंज करके देखेंगे तो एक तरह से बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे घट रहा है, ठीक है, इतना मांगेगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पहला फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है, ठीक है, क्योंकि मेटालिक एक्टर बढ़ रहा है, ऑब्वियस है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स, सेलेनियम एंड टेलुरियम आर मेटलॉइड्स, पोलोनियम इज अ मेटल, तो इसमें वही है, ग्रुप 15 की तरह दो नॉन मेटल दो मेटलॉइड्स और फिर दो मेटल्स, ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल्स, सेलेनियम टेलुरियम मेटलॉइड्स और पोलोनियम एक मेटल, ठीक है। इसमें सारे के सारे एलोट्रोपी दिखाते हैं, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम सब एलोट्रोपी दिखाते हैं। उसमें हम ग्रुप 15 में हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन के अलावा सब दिखाते थे, नाइट्रोजन नहीं दिखाता था, लेकिन ग्रुप 16 में सारे के सारे दिखाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ऑन द ग्रुप, साइज बढ़ रहा है मेटालिक, तो उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ रहे डाउन द ग्रुप, ठीक है। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एस O2 गैस, while sulfur exists as acid solid. हाँ, ये बात ध्यान रखने का है कि ऑक्सीजन तो डायटोमिक गैस की तरह एग्जिस्ट करता है, O2, लेकिन सल्फर क्राउन सल्फर के फॉर्म में एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? ये बात है कि सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो उसके अंदर वैन डेर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा आ जाता है तो सॉलिड बन जाता है। एसिड मॉलिक्यूल है तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो उसके अंदर वैन डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा होता है। हाँ, अब S2 क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें मतलब लोअर टेम्परेचर पे S2 नहीं बनता है क्योंकि इसका जो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है बहुत कम है, क्योंकि इसका ऑर्बिटल्स बहुत बड़ा और डिफ्यूज्ड है तो सल्फर पाई बॉन्ड नहीं बनाता आसानी से अपने आप के साथ, तो इसीलिए S8 एग्जिस्ट करता है। क्राउन सल्फर का स्ट्रक्चर पता होगा, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास है तो वैन डेर वाल्स फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए वो सॉलिड होता है जबकि ऑक्सीजन एक गैस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसका पढ़ेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसका -2 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घट रहा है। क्यों? क्योंकि मेटालिक रिएक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, ठीक है, -2 का स्टेबिलिटी घट रहा है क्योंकि मेटालिक रिएक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। +4 का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो पिछले में डिस्कस किया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, जो लास्ट तुम्हारा सबशेल है 6S2 वाला, उसके पहले जो F वाला है वो उसको ठीक से शील्ड नहीं कर पाता, तो उसके कारण जो 6S सबशेल है वो अट्रैक्शन फील करता है न्यूक्लियस से, और जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो हटना नहीं चाहता, वो काफ़ी अट्रैक्टेड रहता है न्यूक्लियस से, तो उसके कारण उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है हाइयर वाले से। ये लास्ट के मेटल्स में दिखता है, तो इसमें जैसे कि +4 का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप जबकि +6 का स्टेबिलिटी घट रहा है डाउन द ग्रुप, दोनों एनोड पेयर इफेक्ट के कारण, ठीक है। ऑक्सीजन शोज +2 इन OF2 एंड +1 इन O2F2। ऑक्सीजन का सिर्फ दो ही कंपाउंड्स हैं जो हम लोग को याद रखना है जिसमें वो अपना टिपिकल -2 नहीं दिखाता, ठीक है, वो कंपाउंड्स हैं +2 OF2 में। OF2 ऑब्वियसली फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्लस चार्ज कैरी कर रहा है, तो OF2 में +2 और O2F2 में +1, ठीक है, वरना ये -2 ही दिखाएगा ऑक्सीजन अपना। और +4 और +6 वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली कोवेलेंट होते हैं, इतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो कंपाउंड्स कोवेलेंट ही बन जाते हैं, ठीक है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, अब वही बात की थी मैंने, एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, अब क्या एनोमली है देखते हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एच बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन H2O बट नॉट इन H2S, इसीलिए हम लोग H2O में एच बॉन्डिंग होते सिर्फ बॉलिंग पॉइंट मल्टी पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन H2S में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, H2S में एच बॉन्डिंग नहीं होता। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 4, क्यों? क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल यूज़ करने के लिए नहीं है, डी ऑर्बिटल है ही नहीं 2p में, 2p के बाद डी ऑर्बिटल नहीं आता, तो उसके पास सिर्फ 2s का एक ऑर्बिटल और 2p का 3 ऑर्बिटल, मिला के 4 ऑर्बिटल है कोवेलेंसी अपना कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने के लिए। लेकिन इन प्रैक्टिस इट रियली एक्सीड्स 2, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ O इज 4 बट रियली एक्सीड्स 2, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करता, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है बेसिक बेरिलियम एसीटेट, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है कि मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर वो 4 का कोवेलेंसी दिखाता है, तो ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन का 4 लोन पेयर बेरिलियम एक एक बेरिलियम को दिया हुआ है और हर बेरिलियम दूसरे बेरिलियम से के बीच में एक एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है, जिससे अगर P4O10 का स्ट्रक्चर पता हो तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, ये साइक्लिक टाइप का, ठीक है, ऐसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस देख लो कि ऑक्सीजन बेरिलियम 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 बेरिलियम, फिर बेरिलियम को एसीटेट से जोड़ो, हर बेरिलियम को आमने सामने टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ करके जोड़ दो, ठीक है। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, मतलब कि H के साथ बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम लोग बढ़ते हैं, H2E टाइप का कंपाउंड्स बनता है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट H2O हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, सारे हाइड्राइड्स H2O छोड़ के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो कि इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में दोनों में वाटर कोई एक्सेप्शन नहीं है, वाटर सबसे आगे आ जाता है ग्रुप में अपने, वाटर H2S H2SE और H2TE के आगे आ जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें H बॉन्डिंग होता है, ये इसमें एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉर्मल एक्सेप्शन है, ठीक है। बॉन्ड एंगल का बात करें तो बॉन्ड एंगल वाटर का सबसे ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है तो इसीलिए और देख लो. ये बात ध्यान रखने का है कि H2S, H2SC और H2T में ड्रैगोस रूल अप्लाई होता है, जो कि पढ़ाओ तो ड्रैगो रूल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं अप्लाई हो पाता. जो लोन पेयर है वो प्योर प्योर वाइटल में ही रह जाता है, तो उसके कारण वो हाइब्रिडाइज नहीं होता. तो इसके कारण इसका जो बॉन्ड एंगल्स है वो 90 डिग्री के बहुत क्लोज होता है, जबकि H2O में आपका टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल फॉलो होता है. ठीक है. डेल्टा इज फॉर्मेशन ऑफ H2SC एंड H2T इज पॉजिटिव. इसका ये डेल्टा फॉर्मेशन पॉजिटिव का ये मतलब है कि उसका एंट्रोपी फैक्टर फेवरेबल होना चाहिए, वरना रिएक्शन नहीं होगा. मतलब ये कंपाउंड्स बनना उतना फेवरेबल नहीं है, ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड्स है, इसीलिए इनके एसिडिक एक्टर भी ज़्यादा है, क्योंकि जल्दी से टूट जाएगा और एच दे देगा. ठीक है. एसिडिक एक्टर ज़्यादा है, रेडिएशन प्रॉपर्टी ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि ये दोनों जल्दी से टूटेगा और जल्दी से हाइड्रोजन दे देगा. रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, EO2 और EO3 टाइप. ठीक है. आपका ओजोन जो है O3 वो EO2 टाइप ऑक्साइड है, EO3 टाइप नहीं है वो. O3 जो है वो EO2 टाइप है. तो ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड है गैसेस एंड सेलेनियम डाइऑक्साइड इज सॉलिड. जनरल से बात है, नीचे तो सॉलिड जा रहा है, तो ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और सेलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड है. रिड्यूसिंग नेचर का अगर बात करें तो SO2 ग्रेटर देन सेलेनियम ऑक्साइड ग्रेटर देन टेलुरियम ऑक्साइड. ये हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट से कर सकते हैं डिस्क्राइब, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर है तो जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा वो खुद ऑक्सीडाइज होगा. ये सारे कंपाउंड्स अभी +4 में ऑक्सीडाइज होकर +6 में जाएगा, तो जिसका +6 का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होगा, जिसका +6 का स्टेबिलिटी कम होगा उसका रिड्यूसिंग नेचर कम होगा. तो इसीलिए सल्फर का सबसे ज़्यादा है, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण टेलुरियम +6 नहीं दिखाता, वो +4 तक ही दिखाता है. ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग नेचर रिड्यूसिंग नेचर का जस्ट उल्टा बोल सकते हैं. इसको एक्सप्लेन करने का तरीका है, उल्टा है ये तो नहीं बोलेंगे, एक्सप्लेन करने का तरीका भी है. बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी से हम लोग देखते हैं कि SO2 का बॉन्ड सबसे अच्छा है, फिर SO2 का, फिर टेलुरियम का. ठीक है. तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं इसमें. तो रिड्यूसिंग नेचर याद करना आसान है, नॉट परफेक्ट, और फिर उसको जस्ट उल्टा कर दो. बोथ EO2 एंड EO3 आर एसिडिक इन नेचर. इसके सारे ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक. ठीक है. रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स. स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड कंपाउंड्स में फ्लोरिन ग्रेटर देन क्लोरिन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन. मतलब जो फ्लोराइड्स होते हैं इन एलिमेंट्स के वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल. ठीक है. और फिर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड ही एग्जिस्ट करता है. मतलब आप SCl6 नहीं खोज सकते, आप SBr6 या SI6 नहीं खोज पाएंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन SF6 एग्जिस्ट करता है. तो सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड, मतलब सिर्फ अगर 6 वाला कोई बन रहा है तो उसमें सिर्फ फ्लोरीन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. ऑल हेक्सा फ्लोराइड्स है गैशियस, जितने भी हेक्सा फ्लोराइड्स है सब गैशियस होंगे, और सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड ही एग्जिस्ट करेगा. हेक्सा क्लोराइड, हेक्सा ब्रोमाइड या फिर हेक्सा आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. SX6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस ड्यू टू स्टेरिक रीजंस. SX6 में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल उसमें फ्लोरिन रहता है, 6 फ्लोरिन रहता है एक सल्फर पे, तो उसके लोन पेयर के कारण उस पर एक टाइप का शील्ड बन जाता है सल्फर के ऊपर. जब उसमें हम लोग वाटर भेजते हैं हाइड्रोलिसिस के लिए तो लोन पेयर से रिपेल होके वो वाटर अटैक नहीं कर पाता, तो उसके कारण मतलब एक अलग टाइप का एनोमली आ जाता है. SF6 एक्सेप्शनली स्टेबल बन जाता है हाइड्रोलिसिस की तरफ ड्यू टू स्टेरिक रीजंस. SF4 इज अ गैस, SEF4 इज अ लिक्विड एंड TEF4 इज अ सॉलिड. तो SF4 एक गैस है, SF4 गैस है, नीचे बढ़ेंगे सॉलिड बन, मतलब स्टेट देखो नीचे की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है. SF4 गैस, SEF4 लिक्विड एंड TEF4 सॉलिड. ठीक है. ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम फ्रॉम डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड्स. सेलेनियम के अलावा सारे, हाँ NCERT में यहाँ पे सेलेनियम की जगह शायद ऑक्सीजन दिया हुआ है, उसमें करेक्शन होगा. मैंने देखा है ये कि ये सेलेनियम है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन का एग्जिस्ट करता है, यहाँ तो ऑक्सीजन ही दिया हुआ है NCERT में. ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेलेनियम फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स. ठीक है. फिर यहाँ पे मोनोहैलाइड्स है डायमेरिक। देखो इन्हें मोनोहैलाइड्स बोलते हैं, जो हमने पहले पिछले ग्रुप 15 का अगर अपने पॉडकास्ट सुना हो तो ग्रुप 15 में एक जगह पे H2Cl2 बना था, ठीक है, H2Cl2 बना था एक जगह पे एक रिएक्शन में, तो उसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। मोनोहैलाइड्स है डायमेरिक, तो मोनोहैलाइड्स है जिसकी H2F2 H2Cl2 सब लग रहा है डाइमर है, SF का डाइमर है मान लो, HCl का डाइमर है ऐसा लग रहा है। मोनोहैलाइड्स नाम तो है लेकिन क्या दो है, H2F2 H2Cl2, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो ओपन बुक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर पता हो तो वो भी ऐसा ही होता है HOOH, तो वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर है Cl SeSe एक प्लेन में और एक Cl दूसरे प्लेन में, ठीक है, एक Cl और दो Se एक प्लेन में और दो Se और फिर एक और Cl अलग प्लेन में, ओके। जो डाइमर है मोनोक्लोराइड का वो डिस्ट्रॉप कर जाता है +4 और 0 में, तो ये +1 वाला स्टेट था, +1 से +4 और 0 में डिस्ट्रॉप कर गया। Se2Cl2 डिस्ट्रॉप्स इनटू SeCl4 प्लस सेलेनियम, ठीक है। डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन पे आते हैं। डाइऑक्सीजन प्रिपेयर करने का तरीका है कि क्लोरेट्स नाइट्रेट्स या परमैंगनेट, मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनमें ऑक्सीजन ज़्यादा है उसको हीट करेंगे तो अपने आप किस तरह डिकम्पोज होंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, जैसे कि क्लोरेट्स नाइट्रेट्स और परमैंगनेट्स को हीट करने से ऑक्सीजन मिलता है। बगल में एग्जांपल है पोटेशियम क्लोरेट को हीट करेंगे MnO2 के कैटलिस्ट के साथ तो KCl और ऑक्सीजन मिलेगा। नीचे दिया हुआ है कि परमैंगनेट को कैसे करना है, परमैंगनेट को हीट करेंगे तो K2MnO4 मैंगनेट MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, दोनों रिएक्शंस याद भी रखना है, खासकर परमैंगनेट वाला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक में दोबारा आएगा और इम्पॉर्टेंट है। प्रिपरेशन में और तरीके हैं कि आप कोई भी ऐसे मेटल ऑक्साइड को हीट कर दो जो मेटल नोबल टाइप से हो, मतलब वो थोड़ा सा अपना स्टेट में, मतलब वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता हो, वो अपना नेचुरल स्टेट में रहना ज़्यादा प्रेफर करता हो। जैसे कि एग्जांपल ही ले लेते हैं सिल्वर, सिल्वर पता ही है कि तुरंत हीट करते ही तुरंत ऑक्सीजन दे देगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। मर्करी के साथ भी सेम हालत है, HGO को हीट करेंगे तो HGO और O2 मिल जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि Pb3O4 को हीट करते हैं तो PbO मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए Pb3O4 दो चीज़ों से बना हुआ है, मिक्स्ड ऑक्साइड है वो 2 times PbO प्लस PbO2 से बना हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 2 times PbO प्लस PbO2 से बना हुआ है। तो PbO तो हमारे पास पहले से है, PbO2 अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो रिड्यूस हो जाता है, Pb+4 से +2 में आ जाता है, रिड्यूस हो जाता है P+2 और ऑक्सीजन बन जाता है। तो हम लोग को नेट ये याद रखना है कि Pb3O4 को भी हीट करने से PbO और ऑक्सीजन मिल रहा है और ऑक्साइड नहीं मिलता, ठीक है, PbO और ऑक्सीजन। 2PbO2 को हीट करते हैं तो 2PbO प्लस O2 सेम रिएक्शन ऊपर वाले, ठीक है। थर्ड वे इसको प्रिपेयर करने का, हाइड्रोजन परऑक्साइड में को मैंगनीज ऑक्साइड या फिर फाइनली डिवाइडेड मेटल्स जो कि कैटलिस्ट से ऐड कर सकता है उसके प्रेजेंस में वो डिकम्पोज हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन परऑक्साइड तुम्हारा MnO2 और फाइनली डिवाइडेड मेटल्स जैसे के प्रेजेंस में H2O और ऑक्सीजन में डिस्प्रॉप कर जाता है, ठीक है। ऑन अ लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बहुत ही लार्ज स्केल पर अगर हम लोग को ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करना है तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस करो तो हम लोग को एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन, कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन, ठीक है। इंडस्ट्रियली फ्रॉम एयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिमूव्ड देन लिक्विफाइड एंड फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड टू गिव N2 एंड O2 इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। देखो नाइट्रोजन में हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ा था लिक्विफैक्शन ऑफ एयर से, तो उसमें दो काम एक साथ हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन भी बन रहा है नाइट्रोजन भी बन रहा है। इंडस्ट्रियली फ्रॉम एयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O रिमूव्ड दे रिमूव्ड तो उनके पास बचता है मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देन लिक्विफाइड एंड फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड N2 एंड O2, O2 इज लिक्विफाइड फर्स्ट एंड देन N2, O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो वो जल्दी लिक्विफाई हो जाते हैं और फिर N2 बाद में होता है, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन, इट इज कलरलेस ओडरलेस, पता ही सबको दिन हमारे आसपास ही रहता है, कलरलेस भी है ओडरलेस भी है, एंड सॉल्युबिलिटी इज जस्ट सफिशिएंट टू सपोर्ट मरीन और एक्वाटिक लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स है, एक्वाटिक प्लांट्स है, उन्हें जो ऑक्सीजन चाहिए वो इसीलिए मिल पाता है क्योंकि ऑक्सीजन कुछ एक्सटेंड तक सॉल्युबल है वाटर के अंदर, और इतना सॉल्युबल है कि जितना ज़रूरत हो। ठीक है, ऑक्सीजन के तीन स्टेबल आइसोटोप्स हमें पता है, 16O, 17O और 18O, तीन स्टेबल आइसोटोप, एलोट्रोप नहीं, आइसोटोप। क्या क्या है? 16, 17, 18। ये लगभग सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाता है इनफैक्ट, एक्सेप्ट सम नोबल एलिमेंट्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। बाकी उसके अलावा ये सबके साथ ऑलमोस्ट रिएक्ट कर जाता है, एंड सम नोबल गैसेस के साथ भी ये नहीं रिएक्ट करता। ठीक है, लेकिन कभी कभी ज़ेनॉन और इनके साथ कर भी जाता है, वो हम आगे नोबल गैसेस वाले फैमिली में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सोथर्मिक होता है कि कंबशन हो रहा है एक तरह से बोल सकते हैं, तो एक्सोथर्मिक ही होना चाहिए, लेकिन कुछ रिएक्शंस में एक स्टार्टिंग में एक हीट आपको देना पड़ता है ताकि जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ने के लिए आपको हीट देना पड़ता है, लेकिन नेट रिजल्ट आपका एक्सोथर्मिक ही होता है। ठीक है, इसको ऑक्साइड्स बनाने और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 2SO2, ये कैटलिटिक ऑक्सीडेशन के दो एग्जांपल्स हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन B2O5 कैटलिस्ट के फॉर्म के प्रेजेंस में डालेंगे SO3 मिल जाता है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के प्रोसेस में, वो भी अभी पढ़ेंगे। और अगला है HCl में अगर ऑक्सीजन डालेंगे CuCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो क्लोरीन और वाटर बन जाता है। क्लोरीन, ये भी हम लोग क्लोरीन के मैन्युफैक्चर में पढ़ेंगे दोबारा से, इसको डीकन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीकन प्रोसेस। इसमें याद रखने की बात है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या है? CuCl2, CuCl2। ऑक्सीजन का यूज़, अब क्या ही बोलो ऑक्सीजन का यूज़ के बारे में, नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड कंबशन चाहिए ही। ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, वेल्डिंग में काम आ सकता है। O2 सिलेंडर्स इन हॉस्पिटल, माउंटेनियरिंग एंड हाई अल्टीट्यूड फ्लाइंग काम आता है। मैनुफैक्चर ऑफ स्टील, हाइड्रोजीन्स इन लिक्विड O2 प्रोवाइड सिमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट्स, वो रॉकेट है जो डायग्राम बना हुआ है। तो हाइड्रोजन इन लिक्विड O2 आर यूज रॉकेट फ्यूल बेसिकली। रॉकेट फ्यूल क्या है कोई पूछे तो? हाइड्रोजन इन लिक्विड O2। ठीक है, हम लोग ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल ऑक्साइड्स, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन और लेड, ऑल ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक। हम थोड़ी पहले पढ़ा था, ऐसे सभी जनाबे अली गए टीना लेने, ऐसे सभी, ग्रुप 15 में पढ़ा था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के जो एलिमेंट्स है उसका लिस्ट क्या है, ऐसे सभी जनाबे अली गए टीना लेने। आर्सेनिक, एंटीमनी, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन और लेड, इनके जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सब एम्फोटेरिक होंगे। इसमें कोई चेक करने पाती है, बहुत आसान तरीका याद रखने का। ठीक है, ऐसे सभी जनाबे अली गए टीना लेने। सिंपल ऑक्साइड्स में अब यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का बिहेवियर का अगर दिखाए तो Al2O3 जैसे एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो वो एसिड और एल्कली दोनों के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं और दोनों के साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देखते हैं कैसे। जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो Al H2O6 3+ + 6Cl-, अब यहाँ पे H2O6 मतलब H2O कॉम्प्लेक्स के अंदर है। अगला एग्जाम्पल पहले देखते हैं, Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करके Na3AlOH6 मतलब एक कॉम्प्लेक्स मानते हैं इस बार AlOH6 3-, और ऊपर क्या बन रहा है AlH2O6 3+, तो नीचे OH, ऊपर H2O। ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब एसिड डालेंगे तो वाटर आयनाइज नहीं करता, क्योंकि एसिड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा H+ दे देता है, तो वाटर आयनाइज नहीं करता, तो इसीलिए वाटर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही जुड़ जाते हैं। याद करने का भी तरीका मान लो। और फिर दूसरे वाले केस में वाटर आयनाइज करता है, वाटर आयनाइज जब करेगा तो H+ OH- में करेगा तो OH- के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, चार न्यूट्रल ऑक्साइड से जो हमें याद रखना है, बताया था नौ को नाश हुआ, NO, CO, N2O, H2O। क्या क्या है न्यूट्रल ऑक्साइड्स? NO, CO, N2O, H2O। ठीक है, अब ओजोन के बारे में पढ़ते हैं। ओजोन, इसका स्ट्रक्चर छोटा भी दिया हुआ है साइड में। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, डायमैग्नेटिक गैस है, बॉन्ड एंगल 17 degrees है। ठीक है, इट इज़ टू रिएक्टिव टू रिमेन एट सी लेवल। ये गैस ओजोन के बारे में काफ़ी अच्छी कहानी है असल में। ओजोन को बोल सकते हो जान, तो इसका इतनी रिएक्टिव है कि सी लेवल पर रह नहीं पाती, जाना पड़ता है इसे ऊपर। सी लेवल मतलब एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर मिलती है, 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर धूप से ऑक्सीजन से ही बनती है, बनता है मतलब ओजोन ऑक्सीजन से ही बनता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है जो कि अर्थ पे आने वाले सन के रेडिएशन में से यूवी रेडिएशन को फिल्टर आउट कर देता है, ठीक है। अब ओजोन बनाने का प्रिपरेशन का तरीका क्या है? ऑक्सीजन को जब चुपचाप चुपके से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं तो ओजोन बनता है। असल में इसमें और कोई तरीका नहीं यूज़ कर सकते हम लोग, फ्लेम का नहीं यूज़ कर सकते कि दोनों काफ़ी कंप्रेसिबल गैसेस हैं, तो इसीलिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, चुपके से ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। स्लो ड्राई स्टीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड एंड साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज डन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट बनता है उसमें भी 10% ही ओजोन होता है, बाकी ऑक्सीजन ही होता है। तो वो अपनी बहन के ओजान की बहन है ऑक्सीजन, तो ओजोन अपनी बहन के नाम ऑक्सीजन से ही जानी जाती है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इसका डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो इसका ये रिएक्शन काफ़ी अनफीजिबल है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में 3O2 से 2O3 बनाना काफ़ी ज़्यादा अनफीजिबल है। हम लोग इसके साथ ओजोनाइजर यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि कैन बी कंडेंस्ड इन लिक्विड O2 टू ऑब्टेन प्योरर O3। आसपास हम लोग लिक्विड O2 का लेयर लगा सकते हैं कूलिंग के लिए, जिससे कि हम लोग को प्योरर ओजोन मिले, ठीक है। हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज भी यूज़ करते हैं, हम लोग फ्लेम क्यों नहीं यूज़ किए, तो कंबस्टेबल है, ऊपर से ओजोन को हम लोग डिकम्पोज नहीं करवाना चाहते, बेचारा अभी बना है वो डिकम्पोज करके फिर ऑक्सीजन देगा तो हमारा पर्पज़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन इज़ अ पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। कलर सीक्वेंस याद रखना होगा, पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड, वॉयलेट ब्लैक सॉलिड। पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड, वॉयलेट ब्लैक सॉलिड, ठीक है। इट इज़ हार्मलेस इन स्मॉल कंसनट्रेशंस, हार्मलेस होता है ऐसे तो मतलब कि कम कंसनट्रेशन में नुकसान नहीं पहुँचाती है, 100 पीपीएम में ज़्यादा तो सर दर्द दे देती है, नोजिया एंड हाई कंसनट्रेशन कैन बी एक्सप्लोजिव, इसका ज़्यादा हो गया तो एक्सप्लोजिव भी हो सकती है। 2O3 गिव्स 3O2 इज़ वेरी फिजिबल, देखो यहाँ पर ध्यान से, 2O3 गिव्स 3O2 मतलब ओजोन का डिकम्पोजिशन काफ़ी फिजिबल रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि उसमें डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो जिसका जो डेल्टा जी है गिव्स एनर्जी चेंज, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा फिजिबल रिएक्शन है, तो इसीलिए ओजोन काफ़ी एक्सप्लोसिव होता है, वो पड़े पड़े ऑक्सीजन में डिकम्पोज किया जाएगा तुरंत आग पकड़ लेगा। इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन, जब ये डिकम्पोज करता है ऑक्सीजन में तो ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, उसके कारण ये काफ़ी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। एग्जाम्पल इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर का यहाँ पर दिया हुआ है, PbS प्लस O3 लेड सल्फाइड में अगर ओजोन डालेंगे सल्फेट में बदल देगा उसको, आयोडीन में अगर ओजोन डालेंगे तो आयोडीन मतलब आयोडाइड में अगर ओजोन डालेंगे तो आयोडीन सॉलिड में बदल देगा। एस्टिमेशन ऑफ ओजोन कैसे करते हैं? ओजोन को हम लोग एक्सेस KI से रिएक्ट करवाते हैं बोरेट बफर के अंदर। बोरेट बफर क्या होता है? बोराक्स को जब पानी में डालते हैं तो फिर जो बफर बनता है वो ये है, 2NaBOH4 प्लस 2H3BO3। इसका pH 9.2, इसका pH याद रखने वाला है, pH इसका कितना होता है बोराक्स बफर का? 9.2। बोराक्स बफर का pH 9.2, ठीक है। ओजोन एक्सेस KI के साथ रिएक्ट करता है बोरेट बफर में, जिसमें आयोडीन लिबरेट होता है एंड इट इज टाइटेड अगेंस्ट हाइपो। तो ये बहुत स्टैंडर्ड मेथड है कि आयोडीन इन्वॉल्व करवाओ, हाइपो के साथ टेस्ट करो, निकालो आयोडीन का अमाउंट, इक्विवेलेंट्स इसका इक्विवेलेंट निकालो, ओजोन का इक्विवेलेंट निकाल दो। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है, पहले बस याद रखना है कि KI के साथ बोरेट बफर के प्रेजेंस में इसको टाइट्रेट कराया जाता है, इसको रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है। एक और रिएक्शन दिया हुआ है कि NO जो कि सुपरसोनिक जेट्स के एग्जॉस्ट में से निकलता है, तो ये मतलब ओजोन डिप्लीशन का रिएक्शन है, एंड वो NO ओजोन के साथ रिएक्ट करके NO2 और ऑक्सीजन बना देता है, तो हमारा ओजोन लेयर इसी तरह से प्लेनिश हो जाता है, मतलब ख़त्म होने लग जाता है। supersonic jets के exhaust के कारण. The freons used in aerosols also deplete O3 layer. जो aerosols के अंदर जो freons होते हैं, जो क्या बोले, हाँ जो freons उन्हें बोलते हैं, जो कार्बन के जो कंपाउंड जिनमें दो फ्लोरीन या दो क्लोरीन से ज़्यादा हो. ठीक है, ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे डिटेल में, फ्लोरीन वाले पार्ट में इसको डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन अभी ये कि फ्रियॉन्स एरोसॉल में यूज़ होते हैं, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ये भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है. तो NO जो कि जेट से निकलता है वो करता है, और फ्रियॉन्स करता है. ठीक है, ओजोन का यूजेस क्या क्या है? ओजोन इज यूज्ड एज जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलाइजिंग वाटर. यूज्ड एज जर्मिसाइड फॉर डिसइंफेक्शन और फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर. इट इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, फ्लावर और स्टार्च. ठीक है, इसको ब्लीचिंग में यूज़ करते हैं. मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4 में यूज़ होता है ये, क्योंकि ऑक्सीजन ओजोन जो है वो KMnO4 से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो KMnO4 के प्रिपरेशन में काम आ सकता है. बाकी अगर कुछ यूज़ करेंगे तो KMnO4 से वीक होगा, वो KMnO4 से मतलब बना ही नहीं पाया KMnO4 को बेसिकली. ठीक है, इसका रिएक्शन साइड में दिया हुआ है कि मैंगनीज प्लस 2 में अगर ओजोन डालेंगे तो मैंगनीज ऑक्सीडाइज करके KMnO4 माइनस बना देगा. ठीक है, एक और रिएक्शन दिया हुआ है कि एक और चीज़ ये काम कर सकता है, वो है S2O8 थायोसल्फेट. मैंगनीज में जब थायोसल्फेट डालेंगे तो MnO4 माइनस और सल्फेट बन जाएगा. तो ये रिएक्शन भी याद रखने का है कि दो तरीके से हम लोग MnO4 माइनस बना सकते हैं. बाकी डी ब्लॉक में पढ़ेंगे. एक तो है कि Mn+2 में ओजोन डालो और दूसरा Mn+2 में थायोसल्फेट डालो. ठीक है, तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे सल्फर के एलोट्रोप्स के साथ. तो सल्फर के दो एलोट्रोप्स हमें पढ़ने हैं, अल्फा रोम्बिक और बीटा मोनोक्लिनिक. दोनों का ट्रांजिशन टेम्परेचर इसको बोलते हैं, वो 369 केल्विन. ये याद रखने का है, ये टेम्परेचर, इस पर अल्फा रोम्बिक से बीटा मोनोक्लिक बन जाता है, बीटा मोनोक्लिक से अल्फा रोम्बिक बन जाता है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर इसको बोलते हैं. अल्फा रोम्बिक येलो कलर का होता है, बीटा मोनोक्लिक कलरलेस होता है. तो अल्फा रोम्बिक येलो, बीटा मोनोक्लिनिक कलरलेस. स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी रोम्बिक का ज़्यादा होता है, मोनोक्लिनिक का कम होता है. मेल्टिंग पॉइंट रोम्बिक का कम होता है, मोनोक्लिनिक का ज़्यादा होता है. ऐसे याद कर लो कि मेल्टिंग पॉइंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी का उल्टा ऑर्डर है, पहला चीज़. दूसरी चीज़, बीटा मोनोक्लिनिक हाई टेम्परेचर बन रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. तो मेल्टिंग पॉइंट मोनोक्लिनिक का ज़्यादा और रोम्बिक का कम, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मोनोक्लिनिक का कम, रोम्बिक का ज़्यादा. ठीक है, दोनों ही एसेट में क्राउन सल्फर के फॉर्म में मिलता है, एसेट फॉर्म है दोनों. बोथ आर सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और कार्बन डाइसल्फाइड में हर मॉलिक्यूलर सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है, जबकि पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में नहीं होता है. ठीक है, रोल सल्फर अल्फा रोम्बिक प्रिपेयर करने का तरीका दिया हुआ है. रोल सल्फर को जब कार्बन डाइसल्फाइड में मिला के इवेपोरेट करवा देते हैं तो अल्फा रोम्बिक सल्फर बनता है, बस जानने का बात है. टू कन्वर्ट रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक, रोम्बिक इज फर्स्ट मेल्टेड एंड कूल टिल क्रस्ट इज फॉर्म्ड ऑन ए सरफेस. रोम्बिक को पहले पिघलाएंगे, फिर जब ठंडा करेंगे तो उसके सरफेस पर क्रस्ट क्रस्ट टाइप का बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद जो नीचे का जो लिक्विड है, वो लिक्विड हटा लिया जाएगा, वो क्रस्ट को ले लिया जाएगा. दो होल बना के लिक्विड को निकाल दिया जाता है. जो नीडलशिप क्रस्ट जो बनता है, जो बसता है, वही तुम्हारा बीटा सल्फर है. वो क्या है? बीटा सल्फर. ठीक है, तो इस तरह से हम रोम्बिक को मोनोक्लिनिक में बदल सकते हैं. S8 रिंग इज पकर्ड एंड क्राउन शेप. S8 रिंग का सबको पता ही होगा क्या स्ट्रक्चर है, नहीं है तो NCERT खोल के देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पता होना चाहिए. S8 रिंग इज पकर्ड एंड क्राउन शेप्ड इन साइक्लो S6 भी एग्जिस्ट करता है, इसका भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है NCERT में. S6 रिंग हैज चेयर फॉर्म, तो S8 में पकर्ड फॉर्म है और क्राउन शेप्ड है, और S6 में वो चेयर फॉर्म ले लिया है. ठीक है, चेयर फॉर्म ले लिया है. तो चेयर फॉर्म लेने के कारण S8 से इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, बॉन्ड एंगल घट गया. ये बात याद रखने का है कि S6 में बॉन्ड एंगल घट जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है. क्या घटता है? एंगल. क्या बढ़ता है? लेंथ. S8 से जब S6 पे आते हैं तो एंगल घट जाता है, लेंथ बढ़ जाता है. ठीक है, एट अराउंड 1000 केल्विन S2 इज़ द डोमिनेंट स्पीशीज, मतलब सल्फर भी S2 के फॉर्म में आ जाता है, एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह. वो भी एक पैरामैग्नेटिक गैस होता है. क्या होता है? वो भी पैरामैग्नेटिक गैस. तो सल्फर का तीन फॉर्म लोग यहाँ पे पढ़े, S8 रिंग जो कि पकर्ड एंड क्राउन शेप्ड होता है, S6 साइक्लिक फॉर्म होता है, उसमें चेयर फॉर्म वो अटेन कर लेता है, और S8 से S6 के अंदर आने में बॉन्ड एंगल घट जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, एंड अराउंड 1000 केल्विन S2 इज अ डोमिनेंट स्पीशीज एंड इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। हाँ, अब S8 का अगर एक प्रॉपर्टी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन 4, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं किसी भी प्लेन के अंदर 4 एटम्स है मैक्सिमम, ठीक है, एक प्रॉपर्टी वो उसका। अगला नेक्स्ट पेज पे आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पे। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होता है, हम लोग जब सल्फर को पहला तरीका तो बहुत कॉमन सा है कि सल्फर को जला दो तो SO2 बन जाएगा, लेकिन उसमें 68% SO3 भी बनता है साथ में बायप्रोडक्ट के फॉर्म में, लेकिन एक तरीका है सल्फर को डायरेक्ट जला दो। दूसरा तरीका है कि सल्फाइट, सल्फाइट में अगर H+ डालते हैं, सल्फाइट एक डाइल्यूट एसिड ग्रुप का नायन है, उसके अंदर अगर हम लोग एसिड डालते हैं तो SO2 गैस इवॉल्व होता है, सल्फाइट प्लस डाइल्यूट HSO4 गिव्स H2O प्लस SO2, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड का, FeS2 में अगर O2 डालेंगे, FeS2 का रोस्टिंग करवाएंगे अगर, तो रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर से हम लोग को मिल जाता है SO2, बहुत अबंडेंसी में मिल जाता है, एक तरह से हम लोग मेटलर्जी का काम भी हो जाता है, हम लोग को आयरन ऑक्साइड मिल गया जो चाहिए था हम लोग को आगे का प्रोसेस के लिए, और हम लोग को बायप्रोडक्ट के फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। द गैस इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड इज स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर्स, स्टील सिलेंडर में स्टोर होता है, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, लिक्विफाई करके स्टील सिलेंडर्स में रखते हैं। प्रॉपर्टीज इसका, ये कलरलेस होता है लेकिन इसका स्मेल पंजेंट स्मेल होता है इसका, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इट लिक्विफाइज H2ATM एट रूम टेम्परेचर, लिक्विफाई होने में भी इसका मेहनत का काम नहीं है, बस प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाना होगा। NaOH और SO2 जब रिएक्ट करता है तो Na2SO3 बनता है प्लस H2O बनता है, Na2SO3 में जब एक्सेस SO2 पास कर देंगे तो NaHSO3 बन जाएगा, तो ये बात ध्यान रखने का है कि यहाँ पे दिख रहा है कि Na2SO3 पहले बन रहा है और फिर NaHSO3 बन रहा है, कई बार लगता है कि पहले एक H हटेगा फिर तो NaHSO3 बनेगा, फिर एक और H हटेगा तो Na2SO3 बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, NaOH में जब डायरेक्ट SO2 पास कर रहे हो तो पहले Na2SO3 बनेगा, वो Na2SO3 एक्सेस SO2 के प्रेजेंस में तुम्हारा NaHSO3 बन जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन SO2 का, SO2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके चारकोल के प्रेजेंस में, SO2 जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है चारकोल के प्रेजेंस में, इंपॉर्टेंट है चारकोल के प्रेजेंस में, तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2 बनता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और कैटलिटिक ऑक्सीजन जो पहले पढ़ा था, SO2 प्लस ऑक्सीजन इन वेनेडियम पेंटोक्साइड V2O5 गिव्स SO3, ठीक है। वेन मॉइस्ट, SO2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब पानी के साथ SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में ऐड करता है, सल्फर उसमें प्लस 4 में है, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करता है, खुद ऑक्सीडाइज होकर प्लस 6 में जाएगा, सल्फेट बनाएगा। एग्जांपल दिया हुआ है आयरन प्लस 3 को, फेरिक आयन को SO2 रिड्यूस कर देता है फेरस में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फेट में, और पर मैग्नेट MnO4- को SO2 ऐड करके Mn+2 बन जाता है और खुद बन जाता है सल्फेट, ठीक है। ये टेस्ट भी है SO2 का, टेस्ट क्या होता है SO2 का पता है, पहले तो लाइम वाटर टेस्ट होता है, लेकिन लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, तो कंफर्म करने के लिए हम लोग इसमें इसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अगर उसमें रिएक्शन हो जाता है तो वो SO2 है, CO2 नहीं है, ठीक है। इसके यूजेस क्या है, यूज इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर, यूज इन ब्लीचिंग वुल एंड सिल्क, इट इज़ यूज इन एंटी क्लोर, क्लोरीन एक्स्ट्रा क्लोरीन हटाने के लिए एंटी क्लोर, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव, इट इज़ यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, सोडियम बाइसल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड एक्सेट्रा, लिक्विड SO2 इज यूज डिजोल्व अ लॉट ऑफ केमिकल्स, ये एक नया पॉइंट है, लिक्विड SO2 इज यूज डिजोल्व अ लॉट ऑफ केमिकल्स, जो काफ़ी सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है ये। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर क्या क्या है, ये हमें इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर आपको बनाना कम्फर्टेबली आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो NCERT से और समझ जाओगे तो दिमाग में बन जाएगा। तो पहला सल्फ्यूरस एसिड SO H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, तो एक डबल बॉन्ड O और दो OH, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड S OH OH, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड S OH OH, बहुत कॉमन स्ट्रक्चर पता होना भी चाहिए। परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ऐसा लगता है मानो दो सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ दिया और बीच में परोक्सी लिंकेज लगा दिया हो, दो सल्फ्यूरिक एसिड की यूनिट्स को जोड़ के बीच में परोक्सी लिंकेज लगा दिया हो तो परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जिसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड, ठीक है। उसके बाद उलियम आता है H2S2O7, इसमें भी ऐसा ही लग रहा है कि मान लो दो सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ के बीच में एक ऑक्सीजन लगा दिया हो, पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड। और पिछले ग्रुप 15 में मैंने बताया था कि पाइरो कैसे बनाते हैं। पाइरो बनाने का तरीका है, किसी भी एसिड को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से एक वाटर हटा दो। तो H2SO4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? H4S2O8। उसके अंदर से एक वाटर हटा दो, H2O हटा दो, तो क्या बचा? H2S2O7, ठीक है, H2S2O7। एक और चीज़ ऐसे कहते हैं, H2SXO6 के फॉर्म के जितने भी एसिड्स होंगे H2SXO6 फॉर्म में, उसमें X का वैल्यू 2 से 5 तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। यानी कि 2 के बाद जितने लगाते जाओ लगाते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, 2 से लेके 5 तक ही वो X का वैल्यू जा सकता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल है, किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका प्रॉपर्टीज और मैन्युफैक्चरिंग हम लोग देखते हैं। इसको मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस है बहुत ही कॉमन, बहुत ही प्रॉपर प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसमें क्या करते हैं, पहले सल्फर डाइऑक्साइड का कैटलिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जिससे हम लोग को SO3 मिलता है। अब ये बात है कि सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से मिला, तो ऊपर हमको पढ़ा था कि रोस्टिंग एक अच्छा तरीका, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स इज अ गुड वे टू गेट SO2। तो वही SO2 यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके B2O5 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में SO3 बनाता है। इसका डेल्टा एस नेगेटिव इस रिएक्शन का, रिएक्शन अच्छा से हो रहा है। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल। तो इसीलिए अगर, क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो इसीलिए लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड की तरफ ज़्यादा फेवरेबल होगा। लीच एटेलियस प्रिंसिपल लगाओ, एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर पे आगे की तरफ फेवरेबल होगा, और प्रेशर ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा तो उस तरफ रिएक्शन बढ़ता है जितना मोल्स कम होता है, तो मोल्स फॉरवर्ड साइड में कम है, तो इसीलिए लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवरेबल। इसका रिएक्शन है अपने पास, इसका रीज़न है अपने पास, यानी कि याद करना है। लो टेम्परेचर क्यों फेवरेबल है? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चल जाएगा। एंड हाई प्रेशर, हाई प्रेशर क्यों? जिधर प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो रिएक्शन उस तरफ टेंड करता है जिस तरफ मोल्स कम हो, तो मोल्स अभी फॉरवर्ड साइड में, प्रोडक्ट साइड में कम है, तो प्रेशर हाई कर देते हैं, ठीक है। कंडीशंस, इसका रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है? 2 bar और 720 केल्विन पे ये ऑपरेट करता है पूरा मैकेनिज्म। दूसरा स्टेप जो है, पहला स्टेप तो हुआ कि SO3 बना लिया, SO3 क्या करें, SO3 को हम लोग H2SO4 में अब्जॉर्ब करवाते हैं। ये बात अजीब सा है कि H2SO4 में ही करवाते हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस है, अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली इसको पानी में मिलाएंगे तो काफ़ी मिस्ट होगा, काफ़ी मिस्ट बनेगा, इसके कारण इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है और हमें अच्छा यील्ड भी नहीं मिलेगा। तो पहले SO3 को H2SO4 में डाला जाता है, जिससे वो ओलियम बन जाता है, पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या किया, SO3 को H2SO4 में डाला तो वो ओलियम बन गया। वो ओलियम को डिस्टिल कर सकते हैं, ओलियम में पानी डालेंगे, पाइरो फॉर्म है, पाइरो में पानी डालते हैं हमेशा एसिड मिलता है, तो पाइरो एसिड में जो कि ओलियम था, ओलियम में पानी डाला तो सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये 96-98% प्योर तक जा सकता है, ठीक है। हम लोग ओलियम इसीलिए यूज़ करते हैं, दो रीज़न से, एक तो मिस्ट ना हो, दूसरा रीज़न हम लोग अपना कॉन्सेंट्रेशन खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, जितना ज़रूरत होगा उतना डाइल्यूट करेंगे, उतना वाटर डालेंगे। अगर हम लोग वैसा नहीं करते तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी के हिसाब से अपना बन जाता, आपका कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता था। तो इसलिए पहले ओलियम बनाते हैं, उसके बाद ओलियम में पानी डालते हैं ताकि वो H2SO4 बने। ये 96-98% प्योर होता है। हाँ, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है बस, कि जो डायग्राम दिया हुआ है NCERT में कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, उसमें लिखा हुआ है कि आर्सेनिक प्योरीफायर के अंदर जेलाटिनस फेरिक ऑक्साइड होता है। बस एक पॉइंट दिखा तो मैंने लिख लिया था, आर्सेनिक प्योरीफायर के अंदर जेलाटिनस फेरिक ऑक्साइड होता है, जेलाटिनस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। प्रॉपर्टीज, कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड, कोवेलेंट सॉलिड है तो कलरलेस है, डेंस है, ऑयली लिक्विड है। डिजॉल्व्स इन वाटर विद वॉल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज डेल्टा, लार्ज हीट, ठीक है। जानते ही एसिड को पानी डालेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इट हैज लो वॉलेटिलिटी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, अगेन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आ गई है। लो वॉलेटिलिटी, जल्दी से वैपोरेट नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एंड कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल. ठीक है, के फॉर H2SO4 इज मच मच ग्रेटर देन K2. ऑब्वियसली कि पहला जो डिसोसिएशन वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, काफ़ी ज़्यादा उसको तोड़ने का कैरेक्टरिस्टिक है. इसीलिए H2SO4 जब डिसोसिएट करता है तो मेजरली हमें H+ और H2SO4- मिलता है, ना कि सल्फेट आयन. ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन H+ और H2SO4- आयन्स का होता है. इट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वॉलाटाइल एसिड्स फ्रॉम देयर सॉल्ट्स, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का वॉलाटिलिटी कम है, तो वो मोर वॉलाटाइल एसिड जैसे कि नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने में काम आ सकता है, क्योंकि वो खुद वेपराइज नहीं होगा और वो नाइट्रिक एसिड को कलेक्ट कर पाएंगे आराम से. ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी यूज टू प्रिपेयर अदर मोर वॉलाटाइल एसिड्स. इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है क्वेश्चन के थ्रू, MX इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग H2SO4 गिव HX जो कि एसिड होगा. तो X क्या क्या हो सकता है, ऑप्शन से फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रेट, ब्रोमाइड और आयोडाइड. तो इसका ऑप्शन से फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रेट ही आंसर होगा, ABC फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रेट. मतलब कि हम लोग इसे HF, HCl और HNO3 बना सकते हैं कॉन्ग H2SO4 के प्रेजेंस में, अक्सर सॉल्ट, मेटल सॉल्ट हम लोग यूज़ करें तो. अब बात हो कि ब्रोमाइड और आयोडाइड ऐसा क्या बिगाड़ा कि उसको नहीं यूज़ कर सकते. बात यह है कि ब्रोमाइड और आयोडाइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे उसके अंदर, तो वह प्रॉपर्टी पढ़ा था इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल. तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिलेगा तो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा. एसिड बेस रिएक्शन तो हुआ ही नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया. वो रेडॉक्स रिएक्शन के कारण ब्रोमीन और आयोडीन गैशियस फॉर्म में HBr और HI बनाने की जगह वो दोनों Br2 और I2 बना के निकल लिया. Br2 और I2 बन के निकल लिया, कैसे एस्केप निकल गया, हम लोग का जो प्रोडक्ट था एसिड वो नहीं मिला, कतई नहीं मिला. तो ब्रोमीन और आयोडीन याद रखने का बात है H2SO4 के साथ नहीं देता HBr या HI, वो ब्रोमीन या आयोडीन देगा. हाँ, कॉन्क H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ अगर ब्रोमीन और आयोडीन को रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को डिसाइड प्रोडक्ट अपना मिल जाएगा, किसके साथ, कॉन्क फॉस्फोरिक एसिड. कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पता ही काफ़ी जगह डिहाइड्रेशन के काम में आता है ये. ठीक है, गैसेस कैन बी ड्राइड बिल्कुल इफ दे आर डू नॉट रिएक्ट विद इट. अब क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिडिक है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो गैस हम लोग इससे डिहाइड्रेट कर रहे हैं, जिस गैस को सुखा रहे हैं, वो गैस ऑब्वियसली बेसिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रिएक्ट ही कर जाएगा, तो डिफीटिंग द इंटायर पर्पस. तो इसीलिए वो गैस को बेसिक नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा, तो उसको हम लोग इसे डिहाइड्रेट करवा सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से. चारिंग एक प्रोसेस है जिसमें ये शुगर दिया हुआ है, शुगर में जब सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो वो ब्लैक मास मतलब कार्बन में उसका वाटर जो अलग कर देता है, पता ही था अभी कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो H2O यूनिट को एज ए यूनिट H2O अलग कर देता है और कार्बन पीछे छूट जाता है, वो कार्बन जो ब्लैक ब्लैक बचता है, तो इसी प्रोसेस को चारिंग बोलते हैं. ठीक है, इसी कारण से जब भी H2SO4 किसी के स्किन पे बिगड़ जाए तो वो इलाका काला पड़ जाता है, ब्लिस्टर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से सारा मॉइस्चर खींच लेता है, H2SO4 सारा मॉइस्चर ले लेता है. हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग नहीं है, मॉडरेट है. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर दिया हुआ है साइड में, कॉन्क HNO3 ग्रेटर देन कॉन्क H2SO4 ग्रेटर देन कॉन्क H3PO3. ठीक है, तो HNO3 सबसे ज़्यादा है, H2SO4 मॉडरेट है, लो तो कतई नहीं है लेकिन हाइएस्ट भी नहीं है, मॉडरेट. कॉपर में जब H2SO4 डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड तो CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O बनेगा, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ऐड कर रहा है वो, उसका रिडक्शन भी हो रहा है और एसिड बेस रिएक्शन भी हो रहा है, तो इसके कारण CuSO4 SO2 दोनों बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में. कार्बन प्लस H2SO4 गिव CO2 प्लस SO2 प्लस H2O. ठीक है, सल्फर प्लस H2SO4 ये एक रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन है, ये पूछा जा सकता है. सल्फर प्लस H2SO4 गिव्स SO2 प्लस H2O, ये कम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, जैसे डिस्प्रॉप होता है. डिस्प्रॉप में क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट दो ऑक्सीडेशन स्टेट में टूटता है, एक बड़ा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, एक छोटा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट. मान लो +2 है तुम्हारा, तो +2 टूटा किस में, +4 और 0 में मान लो. ठीक है, कम प्रोपोर्शनेट क्या होता है कि दो हायर मतलब एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के एक प्रोडक्ट बना, मतलब डिस्ट्रो को जस्ट उल्टा। जैसे इसमें सल्फर जीरो पे और H2SO4 में सल्फर प्लस सिक्स पे, तो जीरो और प्लस सिक्स कंबाइन करके प्लस फोर वाला सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो क्या बोलते हैं, कम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ठीक है, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 फॉर्म ZnSO4 प्लस H2 और जिंक प्लस कॉन्क H2SO4 फॉर्म ZnSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। तो ये डिफरेंस कहाँ आया, देखो ये बात एकदम ध्यान से सुनना। जब हम लोग डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ एक एसिड की तरह ऐड करते हैं, सिर्फ एसिड की तरह ऐड करते हैं, और ZnSO4 और H2 बनता है जो नॉर्मल एसिडिक प्रॉपर्टी है। लेकिन जब कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन होता है तो एसिड के साथ साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी रिएक्ट करता है, एसिड के साथ साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है। तो एसिड वाला प्रोडक्ट तो बना, ZnSO4 बना, लेकिन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट किया तो वो खुद रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होकर क्या बनाया, वो SO2 प्लस सिक्स से प्लस फोर में आके SO2 और वाटर। ठीक है, यूजेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किंग ऑफ केमिकल्स है। इसको यूज़ किया जाता है किसी भी नेशन की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ को जज करने में, कि वो कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस एंड कंज्यूम करता है, उससे किसी भी नेशन की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ का पता चलता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एक्सेट्रा। इट इज़ यूज इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट्स, पेंट्स, डाई स्टफ एक्सेट्रा। डिटर्जेंट में यूज़ होता है, मेटलर्जी में यूज़ होता है, काफ़ी यूज होता है इसका। यूज इन स्टोरेज बैटरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा वो स्टोरेज बैटरी, लेड सल्फ्यूरिक एसिड स्टोरेज बैटरी। एंड यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट्स, नाइट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर में भी काम आता है। इसके साथ ही हमारा ग्रुप 16 ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट, आपको सब कुछ समझ में आया हो। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो फील फ्री टू आस्क मी आइदर ऑन एंकर और बाई कॉन्टैक्टिंग मी ऑन कोरा और स्पॉटिफाई। ओके, आई विल बी मेकिंग फर्दर पॉडकास्ट ऑफ ग्रुप 17 एज सून एज पॉसिबल, एंड डू शेयर योर फीडबैक एंड योर सजेशंस, दे आर रियली हेल्पिंग मी। एंड एंजॉय केमिस्ट्री, हैव अ गुड डे, थैंक यू।